प्रश्नोत्तर ऐसे हैं जो बुद्धि में यदि हो तो तार चाहे तो भी जुड़ती नहीं है। तो कुछ क्योंकि मुरली वाले भाई जी हमारे साथ हैं, तो पहला प्रश्न मुरली से ही संबंधित है कि मुरली ब्राह्मणों का जीवदान है भाई जी, तो मुरली सुनने की विधि क्या है, कैसे मुरली को याद रखा जाए, किस विधि से मुरली सुनी जाए, कृपया मार्गदर्शन करें।
ये तो सब समझ ही गए, बाबा के बच्चे हैं। मुरली किसको हम कहते हैं, किसको कहते हैं? डायरेक्ट भगवानो आच, जो निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश करके ब्रह्मा मुख से महावाक्य उच्चारण किए, वो महावाक्य मुरली कहलाए। और उन महावाक्यों में जो साकार बाबा के समय की मुरलियां हैं, उसमें साकार बाबा के अपने अनुभव और ज्ञान सागर का ज्ञान दोनों मिक्स हैं। इसलिए इसको समझना जरूरी है। कई बार कई लोग सोचने लगते हैं, पता नहीं ये शिव बाबा बोल रहे हैं या ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के अनुभव ही हैं। कभी कभी ऐसे अनुभव बाबा सुनाता है जैसे मैं भक्ति काल के अंदर कैसे पूजा करता था, कैसे पाठ करता था। बाबा कई बार कहते हैं मैं श्री नारायण का अनन्य भक्त था, हमारे मेरे पैकेट के अंदर जेब के अंदर श्री नारायण का हमेशा फोटो रहता था। एक बार मैंने वो फोटो देखा कि श्री नारायण जी लेटे हुए हैं विष्णु के रूप में और लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं। मुझे लगा ये तो ठीक नहीं है, सत्ययुग में नारायण कहाँ से इतना थका हुआ होगा जो लक्ष्मी उसके पांव दबाएगी, इसको अलग कर दो। मुरली के अंदर कभी कभी ऐसे अनुभव आते हैं। ये शिव बाबा का नहीं अनुभव है, ये ब्रह्मा बाबा का अनुभव है। शिव बाबा तो सीधा सीधा ज्ञान देता है, आत्मा का, परमात्मा का, ड्रामा का, चक्र का, पुनर्जन्म का, पूरे सृष्टि चक्र का। तो ये भी एक समझ चाहिए, जब कोर्स करते हैं तो ये समझ मिल जाती है कि ये शिव बाबा कह रहे हैं या ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। और उसको हम जब समझ जाते हैं तो शिव भगवानों वाच जो है, जो हमारी निजी धारणाओं से संबंधित है, क्योंकि बाबा इस सृष्टि पर जब आते हैं तो मानव को देव बनाने के लिए आते हैं। जो हमारी मानव की संस्कारों की आदतें थी, संस्कार थे, देहाभिमान वाले संस्कार थे, उस संस्कारों को परिवर्तन करके उन्हें देवतुल्य बनाना, देवता बनाना, उसके लिए बाबा बहुत मेहनत करते हैं। और उसके लिए चार सब्जेक्ट हमें पढ़ा रहे हैं। पहला ज्ञान समझ दी, ज्ञान सुनाया, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, क्या करना है। आज भी बाबा कर्मों का कितना सुंदर ज्ञान दिया वरदान के अंदर, ध्यान गया होगा आपका। कई बच्चे कर्मों के लीला में अलबेले हैं अभी तक। किसी ने अगर गलत बात किसी के लिए सुना दी और आपने सपोर्ट कर दिया, हाँ हो सकता है ऐसा, तो आपके ऊपर पाप चढ़ जाएगा। कितना बहुत गहराई से ज्ञान दिया, समझ दी बाबा ने, इससे हम पापों से, गलत कामों से बच सके। तो ज्ञान को यथार्थ समझना कि शिव बाबा ने ज्ञान क्या दिया, समझ क्या दी। फिर उसके साथ अपने संबंध बाबा से जुड़े रहे, उसके लिए योग सिखाया, आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्शन जुटा रहे। सब संबंध जो आज व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, वो सब संबंध एक बाबा के साथ जुट जाएं, बाबा से सब प्राप्तियां इंसान करे, व्यक्तियों की तरफ आकर्षित न हो, इसलिए सहज योग सिखाया। लेकिन ज्ञान और योग के साथ साथ हमारे जीवन में धारणाएं हो, दिव्य गुण आते जाएं, जिससे हम देव पद को प्राप्त कर सकें, उसके लिए दैवी गुण किसको कहते हैं, कैसे वो जीवन में उतारे जाए, उसकी बहुत सुंदर कई प्रकार की ट्रेनिंग दी। और जब ज्ञान योग धारणा से संपन्न आत्मा बन जाती है तो उसके चलने से, बोलने से, कर्मों से सेवाएं होने लगती अपने आप। तो ये साकार बाबा की मुरली के अंदर अगर आप सुनते हो, तो मैंने जब शुरू किया था, मैं भी ऐसे ही आया था, भले हमारे लौकिक घर में पिताजी, मैं 4 साल का था तब से मुरली सुनाना शुरू कर दिया था, 4 साल की उम्र में ही। मम्मा आई थी 60 में, हूँ जो बता रही थी ना दीदी अभी राखी बहन, कि 35-36 दादियों को लेकर के आई थी, तो उस समय मेरी केवल 4 साल की उम्र थी, मुझे याद भी नहीं है। और पिताजी ज्ञान में चल गए थे, 58 में ही आ गए थे ज्ञान में, 60 में मम्मा को लेके आए। तो घर में मुरली चलती थी, लेकिन मैंने एक दिन मुरली नहीं सुनी। मैं इकलौता बेटा था और हमारे पिताजी के जो बड़े भाई थे वो कुमार थे, उनको पता था कि अगर ये ब्रह्मा कुमारी में चला गया तो कुलदीपक कौन बनेगा। बहुत चिंता थी उनको, अपनी शादी नहीं किया उन्होंने, लेकिन दूसरे को भी ऐसा न हो जाए कि कुमार ही रह जाए, ब्रह्मा कुमार बन जाए, इस संस्था में चला जाए तो घर कौन संभालेगा, दुकान कौन संभालेगा, कुलदीपक कौन होगा। इसलिए उन्होंने मुझे बचपन में ही अडॉप्ट कर लिया और अपने पास रखने लगे। तो मैंने बाबा मम्मा आए कानपुर में, बाबा गए, मैंने मिलन नहीं मना पाया साकार में। लेकिन रामा की भाभी ऐसी थी जो बाबा के पत्रों से मेरी पालना होती थी। बाबा पत्र बहुत प्यार से, हर 15 दिन में मेरे घर में पत्र आता था, मैं पढ़ता था। और जब मैं 15 साल का था तो मधुबन आया और यहां 1 महीने की सेवा में रुका। दादियों का, बड़ों का इतना प्यार पाया, इतना स्नेह मिला, अपनत्व की फीलिंग आई कि सब अपना है, अपने हैं। उसके बाद निर्णय ले लिया, अब मुझे उस दुनिया में नहीं जाना। फिर भी दादियां कहती, नहीं तुम छोटा है, अभी तो बहुत पढ़ाई की उम्र है, पढ़ लो, ये करो वो करो। अच्छा, कोई बहुत ऐसा लगता है कि मुझे समर्पित होना, तो पिताजी की चिट्ठी लेके आ जाना। बहुत सारी बातें आई। तो मैं 71 में आया था, चला गया। और यही अप्रैल महीना है, मैं 7 अप्रैल 1972 में फाइनल सब की छुट्टी लेके आ गया मधुबन में, समर्पित हो गया। 50 साल हो गए मधुबन में रहते। फिर मैंने यहाँ पर ही मुरली की सेवा के लिए सिंधी सीखी पहले, क्योंकि दादियों की राइटिंग, बड़ों की राइटिंग सब है हिंदी, लेकिन लिपि सिंधी, वो लिखने की उनकी आदत हिंदी नहीं है, वो सिंधी ही है। तो उनकी किताबें पढ़ सकूं, उनकी मुरली पढ़ सकूं, उनकी क्लासेज पढ़ सकूं, उसके लिए मैंने सिंधी सीखी। और सिंधी के साथ साथ फिर टाइपिंग सीखी है। और टाइप सीखने के बाद ये सेवा मुझे 76 में मिली। तो उसके पहले दीदी मनमोहिनी थी, वो बहुत अच्छे मुरली से प्रश्न निकालती थी और उन प्रश्नों को मुझे कहती थी, तुम इसको टाइप करके ले आओ। उसकी गहराई क्या है, उसकी बात बाबा जो कह रहे हैं वो क्या है, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर मुझे सिखाया उन्होंने कि जब मुरली सुनते हो तुम 4 भाग अपनी डायरी के बनाओ। एक में ज्ञान की पॉइंट्स लिखो, एक में योग के लिखो, एक में धारणा के लिखो, एक में सेवा के लिखो। चारों सब्जेक्ट कभी कभी एक ही मुरली के अंदर होती हैं। कभी कभी कोई कोई मुरली होती है जिसमें केवल एक बात पर, धारणा पर बहुत जोर होता, कभी सेवाओं पर बहुत फोकस होता, कभी योग पर ही बहुत बाबा सुनाते हैं। तो ऐसे 4 कालम डायरी के बना करके अगर आप नोट करोगे तो आपको 1 हफ्ते में भी करीब 25-30 पॉइंट्स एक टॉपिक की मिल सकती है। और जब मुरली को ऐसे अच्छी तरह से ध्यान से सुनते हैं, एकाग्र चित्त होकर के सुनते हैं और ये ध्यान रहता है कि मुझे नोट्स लेने हैं, तो बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है। कई माताएं भाई हमें कंप्लेन करते हैं, मुरली सुन ली, 5 मिनट के बाद कोई एक बात भी याद नहीं रहती, भूल जाती। भूल क्यों जाती, क्योंकि बुद्धि सुनते समय भटक रही थी। बातें आ रही हैं, अंदर जा रही हैं, बाहर निकल रही हैं। एकाग्रता की कमी है। हम एकाग्रता को बढ़ा के बहुत भावना से, जैसे एक एक बात अमृत तुल्य है और मेरे मन में जा रही है, मैं उस पर सोचूं, विचार करूं, अटेंशन दूं, और अगर अच्छी बात लग गई तो अपने पास नोट कर लूं। मैंने बहुत सारी पॉइंट्स ऐसे नोट करना शुरू किया और नोट करके फिर मैं जब चक्कर लगाता था, डायरी हाथ में नहीं होती थी, जब चक्कर लगाता था तो क्या नोट किया है उस पर ध्यान जाता था, उस पर अच्छा मनन किया, चिंतन किया। तो मुरली सारे दिन के लिए याद हो गई। और फिर जब बैठा अकेले में तो अपनी अलग डायरी उसी आधार से हमने बनाई। मुरली सुनते समय जो नोट लिए अलग बात है, अलग से अपना चिंतन फिर लिखना शुरू किया तो वो मुरलियां अंदर चली गई। इसलिए आप जितनी भी क्लासेज मेरी सुनोगे, कोई बाहर की एक बात भी मेरे पास नहीं है। न मैंने कोई शास्त्र पढ़े हैं, न मैंने कोई कहानियों की बुक्स पढ़ी हैं, केवल केवल बाबा की मुरली पढ़ी है और उस मुरलियों के आधार से हजारों क्लास करा लिए हैं जो आप सब सुनते हो। तो बाबा ने इतना सब सुनाया है, सृष्टि का आदि मध्य अंत पूरा ज्ञान, जो कुछ चाहिए, विज्ञान चाहिए, इंजीनियरिंग चाहिए, कोई भी चीज है, सब कुछ बाबा ने मुरली में सुना दिया। तो हम सब बाबा के बच्चे अगर ध्यान से मुरली सुने तो मैं समझता हूं और कोई चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं ज्ञान सागर अपने बच्चों को बुद्धिवान बना देता है, ज्ञानवान बना देता है। तो ऐसे अगर आप सब नोट करें, एकाग्रचित होकर सुने और पर मनन चिंतन करें तो यह बहुत बड़ा खजाना है और इस खजाने से अगर संपन्न है तो सबसे बड़ी प्राप्ति ये है, आप व्यर्थ बातों से व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएंगे, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी, योग लगाने में मेहनत नहीं लगेगी। योग लगाने में मेहनत उनको लगती है जो अपने संकल्पों पर ब्रेक नहीं दे पाते। संकल्प ही योग है और क्या है। अगर संकल्प व्यर्थ हो, नेगेटिव बहुत चल रहे, फास्ट चल रहे, बहुत चिंतन चलते, बैठो योग में, वही भटकते रहोगे, एकाग्रता नहीं होगी, प्राप्ति नहीं होगी, अनुभव नहीं होगा, फिर कहेंगे क्या करो, योग ही नहीं लगता, एक घंटा बैठे इसी टाइम पास कर लिया। इसलिए मनन करो, चिंतन करो, ज्ञान का अच्छा स्मरण करो, योग सहज हो जाएगा। तो यही अनुभव हमारा शुरू से ही रहा है और उसी आधार से हमने मुरलियों की स्टडी की है। और फिर है अव्यक्त मुरली। जब बाबा अव्यक्त हुए 69 के अंदर, शरीर छोड़ा, ब्रह्मा बाबा शरीर से मुक्त हुए, उसके बाद 21 जनवरी 69 शाम को जब अंतिम संस्कार के बाद भोग लगाया गया तो बाबा की पहली पधरावनी गुलजार दादी के तन में हुई। और उसके बाद बाबा ने कहा, बच्चे जब याद करेंगे, जब कहेंगे, बाबा आपकी सेवा पर हाजिर रहेंगे, बाबा कहीं गए नहीं है, सिर्फ कमरा चेंज किया है, ये मिट्टी की ड्रेस में, लाइट की ड्रेस में चले गए, आप बच्चे जब बुलाओगे तब बाबा आपकी सेवा पर आएंगे। तो 69 से लेकर के 2017 31 दिसंबर तक 48 साल बाबा ने अव्यक्त रूप में गुलजार दादी जी के माध्यम से जो हम सबको पालना दी, पढ़ाया, सिखाया, धारणा की गहराई, योग की गहराई सिखाई, वो है अव्यक्त बाबा की मुरलियां। वो सब प्रिंटेड है, वो सब मुरलियां छपी हुई हैं, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी भी सब है। तो आप सब उसकी स्टडी करो, बहुत कुछ ज्ञान ज्ञान सागर से हमें मिला है, साकार और अव्यक्त मुरलियों से, जिसको अगर आप सब बहुत गहराई से चिंतन करोगे तो बुद्धि बड़ी स्वच्छ, निर्मल, पवित्र बन जाएगी और संस्कारों की जो अशुद्धि है वो अपने आप शुद्ध होती जाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। भाई जी, ज्ञान की बात तो हुई, ये भी सुना कि आपको स्वप्न भी मुरली के ही आते हैं। ये तो
कई बार ऐसे सुना, स्वप्न भी वही देखता हूँ, बाबा बोल रहा है मैं टाइप कर रहा हूँ, बाबा मुरली चला रहा है मैं लिख रहा हूँ।
ये भाग्य है कोटों में कोई का, लेकिन हम ब्रह्मावत जब मुरली की बातें सुनते हैं, और सुनना और सुनाना भी ब्राह्मणों में बहुत हो गया। बात ये आ रही है कि जैसे क्लास में आपने बोला, या तो रूप आकर्षित करता है या रुपया, लेकिन जब शारीरिक व्याधि आती है तब निश्चय थोड़ा डोलने लगता है, और उस शारीरिक व्याधि में यदि कोई सहयोग देता है तो बुद्धि उसमें अटकनी स्वाभाविक हो जाती है। तो क्या यज्ञ में ऐसा कोई पेपर आपके पास शारीरिक व्याधि के रूप में आया, या हम ब्राह्मणों के बीच दादियों को हमने देखा है, तो ऐसा कोई अनुभव जब व्याधि में आपको बाबा ने बहुत मदद की है?
कई बार शारीरिक व्याधि तो मैं समझता हूँ हरेक के सामने आती है, और दादियों को हमने देखा है अपनी शारीरिक व्याधि को कैसे सबकी दुआओं से पार किया। बड़ी दादी के सामने भी आई, गुलजार दादी जी के सामने भी आई, और दादियां भी हमने देखी, अंत समय में शरीर ही कई प्रकार की बीमारियां उसको लगती हैं, लेकिन अगर दुआएं हैं सबकी तो बहुत सहज उस बात को हम पार कर लेते, पेपर तो आते हैं। मैं भी करीब 28 साल का था जब मैं मधुबन में आया, तो 16 साल का था। 83-84 तक मैंने सब सेवाएं अकेले ही किया, कोई मददगार नहीं था मेरे पास, टाइपिंग सेवा थी, और उस समय स्टेंसिल कटते थे, साइक्लो स्टाइल होती थी, मुरलियां बढ़ती जा रही थी। मैं से जब मैंने शुरू किया था 76 में मुरली डिपार्टमेंट की सेवा केवल 500 मुरली निकलती थी उस समय, और 83 तक करीब 4000 तक पहुंच गई थी। सेंटर्स बढ़ते गए, स्टूडेंट्स बढ़े, विदेश खुलने लगे सेंटर्स, तो मुरली की संख्या बढ़ने लगी। तो मैं अकेले ही एक मुरली 4 बार 5 बार टाइप करता था, स्टेंसिल काटता था, क्योंकि अधिक से अधिक 800-900 हजार तक काफी ठीक निकलती थी स्टेंसिल से। तो 4000 अगर मुरली निकल रही है तो 4 बार मुरली टाइप करनी पड़ती, फिर उसको करेक्शन करना, उसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक ना हो, फिर कोई गलत हो गया उसको ठीक करना। तो मेरा सारा दिन ही इसमें जाता था, और फिर प्रश्न उत्तर निकालना, अंतर्देशी टाइप करना, कार्बन कापियां निकालना, तो फुल मैं मुरली में ही बिजी था। अचानक एक बार मुझे बुखार हुआ, और बहुत ठंडी थी आबू में, जुलाई महीना था, बरसात बहुत पड़ रही थी, बादल इतने ज्यादा थे, जो मुझे ठंडी लगी और बुखार आ गया। लेकिन जो बुखार की दवाई थी वो गलत किसी ने मुझे दी, डॉक्टर जो थे ऐसे समझ नहीं पाए उस बात को, और बहुत हाई डोज दे दिया कि बुखार उतर जाएगा। उस हाई डोज ने मुझे एकदम पैरालाइज कर दिया, है ना, शरीर टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ लेकिन शक्ति खत्म हो गई, पैरों में शक्ति नहीं, हाथों में शक्ति नहीं, मेरे को कोई अगर फूल दे ना तो मैं ऐसे दबा नहीं सकता था, एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, सीढ़ी चढ़ूं गिर जाऊं, सीढ़ी चढ़ूं गिर जाऊं। तो दादी जी ने मुझे एक दिन अचानक देखा तो कहती, इतना अच्छा सब काम करने वाला, इसको हुआ क्या, जाओ डॉक्टर को दिखा के आओ। तो अपने हॉस्पिटल तो थे नहीं, तो मुझे हॉस्पिटल में ले गए सरकारी अस्पताल में। तो डॉक्टर बड़ा रमणीक और मजाकिया था, थोड़ा सा था अपना पर्सनल, मधुबन का ही, अपने समर्पित भाइयों की सेवा में आता रहता था, अज्ञानी बाहर का डॉक्टर था। उसने ऐसे हाथ देखा और चेहरा तो बिल्कुल खिला हुआ था, जरा भी अफसोस नहीं था मैं बीमार हूं या मुझे कुछ हुआ है। तो उसने देख करके कहा है, उस समय पद यात्रा निकलने वाली थी, युवा पद यात्रा 84 में, तो देख करके हंसते हंसते कहता, अरे इसको कुछ नहीं है, पद यात्रा में जाना नहीं चाहता इसलिए ऐसे बोलता है, हंसा दिया लोग हमारे साथ जो गए थे। और जब हमको ऐसे बोला तो दवाई क्या देगा, जब वो बोला ये बहानेबाजी है, बीमारी नहीं है कोई, देख ही नहीं पाया, समझ नहीं पाया। तो जब मैं वहां से गया, फिर आया मधुबन में, तो दादी कहते, ऐसा कैसे डॉक्टर बोल सकता है। दादी जी हमारे बहुत ध्यान रखती थी, क्योंकि मुरली की सेवा थी और बंद हो रही थी, कौन करेगा टाइप, मैं कर ही नहीं सकता था। तो कुछ दिन मुरली बंद हुई, दादी ने कहा, नहीं इसको नीचे ले जाओ, ठंडी बहुत है ऊपर, नीचे ले जाओ। नीचे संगम भवन था, ये शांतिवन वगैरह नहीं था, अपना संगम भवन लिया हुआ था मकान। और जब मैं संगम भवन में जब गया आबू रोड, तो वहां के सरकारी अस्पताल में मुझे ले गए दिखाने, और उस डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, अरे ये तो पोलियो हो गया है, बहुत जबरदस्त बीमारी है, तो कभी खड़ा ही नहीं हो सकता अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया। तो उसने बस मेरे को सुला दिया, और 4 इंजेक्शन 5 इंजेक्शन से उसने कंट्रोल कर लिया कि ज्यादा न बढ़ जाए, जो हुआ है उसको ठीक। तो 4-5 दिन में उसने हमारी बीमारी को कंट्रोल किया, और कंट्रोल करने के बाद रेफर कर दिया पालनपुर, बड़ा हॉस्पिटल है वहां ले जाओ। वहां 8-10 दिन गए, वहां रहे। अब दादी जी को बेचैनी, क्योंकि सब कारोबार ठप, कौन करेगा। तो दादी कभी निर्भय भाई को भेजे, कभी ईशु दादी को भेजे, कभी मोहिनी बहन को, जो भी दादी के बड़े साथी थे, जाओ उसको देख के आओ, जाओ उसको देख के आओ, मिल के आओ। तो रोज मेरे साथ मधुबन वाले कोई न कोई बड़े आते थे, मिलते थे, लेकिन मेरी बोली में, मेरे चेहरे पर, मेरे किसी हाव भाव से ये नहीं लगता था मैं बीमार हूं। बस वही शरीर में शक्ति नहीं, आत्मा बड़ी शक्तिशाली है। तो 8-10 दिन मैं पालनपुर में रहा। उसके बाद मुझे कहा गया कि 1 महीने की फिजियोथेरापी के लिए आपको अहमदाबाद जाना पड़ेगा, फिजियोथेरापी के बिना ताकत नहीं आएगी फिर से। तो मैं अहमदाबाद में चला गया, और अहमदाबाद में सेंटर पर ही रहा। लेकिन दादी जी को यह था कि शरीर की बीमारी का प्रभाव कहीं इसके मन पर ना आ जाए, ये बहुत ध्यान देना आप सब। कई बार हमारे शरीर की बीमारी मन को भी प्रभावित कर देती है, और मन में अगर हम सोच लें, मन बीमार हो जाए, हाँ मैं तो अभी कोई काम का नहीं रहा, अभी क्या होगा, कैसे होगा, तो शरीर तो ठीक हो सकता है लेकिन मन बीमार हो गया तो कभी ठीक नहीं होगा वो। तो दादी जी ने यहां से डायरेक्शन भेजा, उसको बिस्तर पर सोने नहीं देना, उसको जितने सेंटर्स हैं सब सेंटर्स पर सवेरे सवेरे क्लास कराने के लिए ले जाओ। और अहमदाबाद में 25-30 जेंटर थे उस समय, अभी तो 50-60-70-80 हैं। तो सवेरे सवेरे एक भाई मुझे गाड़ी में लेके जाता था, आता था रोज, मुझे कहता था तैयार हो गए, स्नान किया, चलो। कभी किसी क्लास में, कभी किसी क्लास में, मुरली सुनाई, मुरली के बाद क्लास आधा पौना घंटा कराया, फिर वहां नाश्ता किया, नाश्ते के बाद थोड़ा चुंबक में गए, फिजियोथेरापी में गए, ऐसे 12-1 बज जाता था सुबह से, बिजी हो गए हम। फिर बाबा से एक दिन मैंने पूछ लिया, हमने कहा संदेश तो मंगा लूं, क्या बाबा कहता है, तुम्हारी इतनी प्रिय सेवा, मुरली की सेवा मैं कैसे छोड़ सकता हूं। और डॉक्टर कहे तुम अभी टाइप भूल जाओ, टाइप तो कभी नहीं कर सकते हो क्योंकि उंगलियां काम नहीं करेंगे। तो मुझे एक लगा कि मैं बाबा से तो पूछूं आखिर क्या होगा। तो बाबा ने बहुत रमणीकता से, जैसे डॉक्टर ने रमणीकता से कहा था कुछ नहीं है, ऐसे बाबा ने भी वहां से संदेशी को बोला, बच्चे को बोलो कुछ नहीं है, सिर्फ आटा गूंदा करे, आटा गूंदा करे, समझ गए, सिंधी में समझ गए होंगे, आटा होता ना वैसे, पहले रोटी बनाने के पहले से गूंदते हैं ना। तो मुझे आटा दिया संदेशी ने कि रोज तुम सुबह शाम का आटा गूंद करके दो, बाबा ने सेवा दी है। अब मेरे पास 1 किलो 2 किलो जितना रोटी वहां बनती थी, भाई बहने थे संगठन में, वो आटा आता था, मैं ऐसे ऐसे पानी डाल करके उसको गूंदता था, उससे मेरे उंगलियों में ताकत आ गई, गुब्बारा नहीं दबाया उसे लेकिन ये फिजियोथेरापी बाबा ने दिया कि आटा गूंदो ऐसे ऐसे, उसमें सब उंगलियां चलने लगी, 10 खुल गई। तो दूसरी फिजियोथेरापी के बजाय मैंने ये फिजियोथेरापी कुछ दिन किया, 15-20 दिन में मैं ठीक हो गया, लगभग ठीक हो गया। लेकिन दादी जी को आया कि 1 महीना वहां क्या करेगा अहमदाबाद में, तो दादी जी चुपचाप यहां से निकली और निकल करके अहमदाबाद सेंटर पर आई, कोई को बताया नहीं कि मैं आ रही हूं। और दादी जी का आना माना पूरे सेंटर्स में हलचल हो जाना, भाई दादी अचानक कैसे आ गई सेंटर पर। तो दादी जी आई और बहनों ने स्वागत के लिए लाइन में खड़ी थी सब, कोई को नहीं देखा और सीधा मेरे कमरे में डायरेक्ट आ गई। और आके जब देखा मैंने दादी आई हूं, कोई ने बताया तो था नहीं दादी आ रही है, जैसे अनुभव साक्षात्कार जैसा, मैं खड़ा हो गया दादी को देख करके। और दादी ने बस मुझे ऐसे बाहों में ले लिया और लेकर के 5-7 मिनट तक बहुत सीट से लेकर के, और इतना स्नेह से इतनी शक्ति दी, कहती अरे कुछ नहीं, चल अभी मधुबन चल, ठीक हो गया। उसके बाद मुझे नहीं रहने दिया वहां, अब फिजियोथेरापी पूरी हो गई तुम्हारी। और मैं आया यहां मधुबन में, दादी के कहने पर शक्ति मिल गई, वरदान मिल गया, और मधुबन में आया। और मैंने कहा लाओ टाइप, ये भाई जो बताया ना जो शरीर छोड़ा, वो उसी समय मिला था मुझे सेवा के साथ ही। तो मैंने फिर यहां आकर के टाइप फिर से शुरू किया, और जो मैं उस समय 10-12 मिनट में स्टेंसिल काटता था, मैंने 9 मिनट में काटा, स्पीड बढ़ाई है, और वही सेवा फिर से शुरू कर दी, सब ठीक हो गया ड्रामा अनुसार। थोड़ी बहुत कमजोरी तो रही जाती है, लेकिन ऐसी कोई कमजोरी नहीं रही, सब सेवाएं फिर से शुरू की, साथी मिल गया, सब डिपार्टमेंट शुरू हो गई। और जब बिल्कुल मैं फिर एक्यूरेट हो गया तो भाई एक्सीडेंट हो गया उसका, चला गया, फिर अकेला पड़ गया। अब अकेला तो पड़ा लेकिन बहुत सेवाएं बढ़ गई, ज्ञान सरोवर बन गया, उधर शांतिवन बनने लगा, पांडव भवन हो गया, फिर कंप्यूटर आने लगे, तो साथी तो चाहिए। तो फिर उसके बाद और नए नए लड़कों को, कुमारों को बुलाया, 5-6 कुमार मिले और वो फिर मददगार बने, अभी 3 जगह डिपार्टमेंट है। और ऐसे करके बाबा ने निरोगी काया का वरदान दे दिया, तब से लेकर के बाबा ने स्वस्थ रखा है और सब सेवाएं करा रहा है।
धन्यवाद भाई जी, जिस तरह आपको बाबा ने वरदान दिया है, हर ब्रह्मवत्स को ये वरदान है ही, बस वरदानों को यूज करना हम सबको
सबसे जरूरी है। सबकी दुआएं, दुआएं इस बीमारी को पार करने में बहुत मदद करती हैं, मुझे तो यही अनुभव है। बड़ों की दुआएं बहुत काम करती हैं, साथियों की दुआएं काम करती हैं। अगर हमने उनको हाँ जी किया है, सिर्फ कुछ नहीं किया, हाँ जी, उन्होंने काम दिया, हाँ जी, ये नहीं कहा दइए मेरे को नहीं आता है, मैं नहीं कर सकता हूं, समय पर जो सेवा सामने आई, चाहे धोबी घाट कराया, चाहे झाड़ू लगवाई, चाहे बर्तन मंजवाए, चाहे रोटी बनवाई, जो सेवा आई, कभी नहीं कहा ये मैं नहीं कर सकता, सब कुछ हाँ जी किया। और हाँ जी करने के कारण बड़ों की दुआएं मिल गई और वो दुआएं इस पेपर को सहज पार करा दी।
जी, इसीलिए भाई साहब डॉक्टर भी जब हार जाते हैं तो कहते हैं अब इनको दवा की नहीं, अब इनको दुआओं की जरूरत है, और हमको तो दुआएं प्रतिक्षण मिल रही हैं। भाई जी, अगला प्रश्न खास इसी संकल्प से सबने भेजा है कि अलग अलग संस्कार घरों में हैं, ज्ञान में चलने वाले तो साथ चलते हैं, लेकिन आज जैसे बाबा ने हंस और बगुले की भी बात की, तो उन संस्कारों की मिलन का रास कैसे हो, घर गृहस्थ में रहते हुए आत्मिक स्थिति निरंतर कैसी बनी रहे, कृपया उस पर भी प्रकाश डालें।
एक बात का ध्यान रखना, ज्ञानी तो आत्माओं को एक समझ की जरूरत है, कभी भी संस्कार एक नहीं होते। क्यों? संस्कार बने कैसे हैं? कर्मों से। पहले संकल्प आए, बोल में आए, संकल्प चले, फिर कर्म में आए, और जब कर्म कोई बार बार किया जाता है तो संस्कार बन जाता है, वो पक्का हो जाता है। उसके बिना फिर आत्मा रही नहीं, वही सोचती है, वही बोलती है, वही करने लगती है। तो परिवार में अगर 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तो आप ये अपेक्षा रखो जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा मैं सोचती हूँ, मैंने इसको जन्म दिया है, मैंने इसको बड़ा किया है, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया है, मैंने इसको योग्य बनाया है, जो मेरा विचार है यही इसके होना चाहिए। कभी नहीं होगा। जहां अपेक्षाएं हैं वहां कभी शांति नहीं रह सकती। इसलिए ध्यान देना, परिवार में जो विशेषता जिसकी है उस विशेषता पर नजर जानी चाहिए, और उसी विशेषता के अनुसार, कोई होते हैं डॉक्टरी पढ़ने के शौक रखते, बच्चे होते हैं मुझे डॉक्टरी बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई कहता हमको खेती करनी है, जैसी जिसकी बुद्धि है उसकी भिन्नताएं उसके संस्कारों के अनुसार हैं, और उसको समझ करके उन विशेषताओं के आधार से उसको वो कार्य देना, जबरदस्ती नहीं, थोपना नहीं। बड़ों ने आज हम सबकी विशेषताएं देखी, और विशेषताएं देख करके आज विश्वास रखा, सबसे बड़ी विशेषता देखो, और फिर विश्वास बहुत जरूरी, फेथ बहुत जरूरी है। अगर फेथ नहीं रखोगे, पता नहीं ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, लुटा देगा, गंवा देगा, तो कभी भी सुखी परिवार नहीं रह सकता। फेथ बहुत जरूरी है। आज इतना बड़ा यज्ञ जो निर्विघ्न चल रहा है, आज इतनी व्यवस्थाएं हो रही हैं, इतना विस्तार हो रहा है, उसका कारण है बड़ों ने हमारी विशेषता को देखी, और विशेषता को देखने के साथ साथ हमारे में विश्वास रखा, इसको जो काम दिया जाएगा ठीक करेगा, और गलत करेगा तो उसको डायरेक्शन दिया, साथ इशारा दिया, तुरंत नहीं कट किया, प्यार से बताया। कई बार हम तुरंत कट कर देते हैं, तुम ऐसा क्यों करता है, तुम सदा ही ऐसा करेगा, और बाबा कई बार एक शब्द बोलते हैं, आप ज्ञानी आत्माएं हो, आपने पवित्रता का व्रत लिया है, आप योगी योग अभ्यास कर रहे हो, अगर अगर आपके अंदर से किसी के प्रति ये शब्द निकलेगा कि ये तो है ही ऐसा, ये तो सुधरेगा ही नहीं, तो ये श्राप है, और ये श्राप अगर उस आत्मा को आप दे रहे हो तो कभी भी घर में शांति नहीं होगी, संस्कार मिलन नहीं होगा। हर आत्मा विशेष है, महान है, उसकी जो विशेषता है उसका वर्णन करो, उसका चिंतन करो, उसके आगे नहीं तो पीछे बताओ कि ये भाई, ये बेटा, ये पुराना बहुत अच्छा है, और आप ऐसे वर्णन करोगे और उस तक वो बात चली जाएगी कि हमारे माँ बाप, हमारे भाई, हमारी बहनें हम इस नजर से देखती हैं, सामने भले आप कैसे भी हो लेकिन अगर पीठ पीछे अगर उनकी प्रशंसा कर दो और वो प्रशंसा वो सुन ले कि मेरे माँ बाप मुझे इस नजर से देखते हैं, तो वो कभी भी आपसे टकराव नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान दो, एक चाहिए फेथ, पहले विशेषता देखने का चश्मा सबके नजर पर होनी चाहिए, हर एक के अंदर विशेषता है, विशेषता देखो, विश्वास रखो, और फिर आंतरिक स्नेह, दिल का स्नेह, सम्मान देना स्नेह के साथ साथ। इतने बड़े संगठन को जो दादियों ने प्यार से चलाया है, वृद्धि विस्तार किया है, एकता के सूत्र में बांधा है, सिंधी में एक बाबा शब्द कहते थे, वन वन की काठी, मधुबन में कोई तमिलनाडु का है, कोई आसाम का है, कोई नेपाल का है, कोई यूपी का है, कोई पंजाब का है, 1800 भाई बहनों का संगठन है, परिवार है, और हरेक का खान पान अलग, हरेक के संस्कार अलग, हरेक की परवरिश अलग, हरेक की पढ़ाई और योग्यताएं अलग, फिर भी कोई नहीं कह सकता यहां भिन्नता है। उनको उनकी विशेषता के अनुसार कार्य मिला है, उनकी विशेषता के अनुसार उनको यूज किया जा रहा है, इसलिए कहीं टकराव की स्थिति नहीं बनती। हम सब परिवार के अंदर रहते, 5-10 सदस्यों को हम नहीं संभाल सकते, और बाबा का परिवार 1800 का घर में बैठा है, एक होकर के चल रहा है, संस्कार अलग हैं, लेकिन झुकना है, सहन करना है, समाना है, मरना है, ये पाठ पक्का है। इसलिए थोड़ा बहुत जहां रहना वहां सहन करना ही पड़ता है। तो सहन करके भी हरेक को सम्मान देना, इससे परिवार में स्नेह और एकता कायम रह सकती है, संस्कार मिलन हो सकता है, और हो करके बाबा ने दिखाया है, ये फैमिली बनाई है।
धन्यवाद भाई जी। संस्कार रास यदि हो जाए तो सत्युग के बीज तो डले ही हुए हैं, अंकुरण भी हो गया है, पर आपने दादियों की बहुत पालना ली है, सभी दादियों की, तो दादियों की ऐसी विशेषताएं, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों ने साकार में भी दादियों को नहीं देखा है, उनकी विशेषता ही, उनका चरित्र ही उनका चित्रण है, तो हमारी दादियों की कुछ विशेषताएं जो आपको बहुत प्रभावित करती हैं, वो विशेषताएं हमारे सामने रखी।
हम संस्कार मिलन से ही शुरू करते हैं, क्योंकि आप सब जानते हो कि बाबा का अव्यक्त होना एक बहुत बड़ा यज्ञ के लिए बहुत बड़ा पेपर था। कोई को पता नहीं था कि ब्रह्मा बाबा चले जाएं, मम्मा गई, बाबा ने संभाला यज्ञ को, मम्मा ही बन गया बाबा। हमेशा मुरली में कहता है बड़ी माँ मैं हूं, ब्रह्मा। मातेश्वरी जाने के बाद हलचल इतनी नहीं हुई, लेकिन बाबा अचानक चला गया और कोई को पता नहीं चला, कोई तो विश्वास ही नहीं कर रहा था बाबा भी शरीर छोड़ेगा इतनी जल्दी, 93 एज थी। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा ने अव्यक्त रूप में जब आए, प्रवेश किया गुलजार दादी के तन में, तो दीदी मनमोहिनी को तो बाबा ने 65 में मधुबन में रखा था, वो दिल्ली की इंचार्ज थे, दिल्ली जोन की। मम्मा अव्यक्त हो गई तो दीदी को वहां से बुलाया और मम्मा की चारपाई पे रख के मम्मा की ही सेवा उनको दे दी कि तुम मम्मा की सीट संभालो। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए उस समय दीदी को बाहर भेजा, और दादी प्रकाशमणि जी जो बॉम्बे संभालती थी, गामदेवी सेंटर पर थी, वो यहां पार्टी लेके आई थी, उनको बोला बच्ची तुम पार्टी भेज दो, तुम रुक जाओ। तो दादी प्रकाशमणि को रोक लिया बाबा ने, वैसे कभी बाबा दादी को रुकने नहीं देता, अरे बच्ची बादल भरे जाओ। अब दादी रुकी और बाबा ने दादी को हाथ में हाथ दे करके शरीर छोड़ा 18 तारीख को, 17 को रुक गई, 18 को यह हो गया। अब दादी और दीदी आ गई, जब बाबा आए तो दीदी और दादी के सिर पर कलश रखा और कहा ये दोनों बच्चियां अब पूरी संस्था को जैसे ब्रह्मा बाबा ने संभाला ऐसे ही संभालेंगी। संस्कार अलग हैं, एक कुमारी है बिल्कुल, दादी कुमार का बिल्कुल प्योर कुमारी, और दीदी मनमोहिनी शादीशुदा, पहले से ही लौकिक परिवार था उनका, मतलब बच्चे नहीं थे, शादी हो चुकी थी, उनके मां के संस्कार थे, लेकिन उन्होंने बहुत पेपर क्रॉस किए थे, दादी के आगे पेपर नहीं आया किसी भी प्रकार के। उनका पिताजी ज्योतिषी था, उसको पता था ये कुमारी रहेगी, मीरा रहेगी, ये शादी नहीं करेगी, इसलिए दादी के ऊपर कोई पेपर नहीं आए थे। लेकिन दीदी का समर्पित होना एक बहुत बड़ा यज्ञ का इतिहास था, बहुत पेपर आए, क्योंकि तो बहुत बड़े धनाढ्य परिवार की थी, शादी नई हुई, दीदी निकली, दीदी की लौकिक माँ निकली, दीदी की छोटी बहन निकली एक साथ घर से, और दीदी की जो चचेरे परिवार का था साथ में, उसमें एक माताजी और दो कुमारियां निकल गई, 6 लोग एक ही परिवार के, संगठित परिवार के अगर घर से निकल जाएं और सब बहनें निकल जाएं तो कितना हंगामा हो जाएगा। सिंध में बहुत हंगामा हो गया, और ये बहुत पैसे वाले मुखिया लोग थे, और उनके परिवार से 2 परिवार निकल आए समर्पित हो गया करके। ऐसे समय पर दीदी निकली, बहुत धनाढ्य परिवार जिनके नाम से अभी भी उनके भाई का जसलोक हॉस्पिटल चलता है बॉम्बे में। लेकिन पेपर यज्ञ में जो शुरू हुए, दीदी ने उसका बहुत बहुत समझ से सामना किया, लौकिक पढ़ी नहीं थी लेकिन बुद्धि बहुत तेज थी। दीदी ने यज्ञ में आकर के सिलाई स्कूल खुलवाया, सिलाई स्कूल में माताओं को बच्चों को ट्रेनिंग देना, सिलाई सिखाना वो सीख शुरू किया, लौकिक से पैसा नहीं लिया, कहा मैं अपने आप कमाती हूं, मैं इनके ऊपर निर्भर नहीं हूं, संस्था पर निर्भर नहीं हूं। हैदराबाद में ऐसा किया, स्कूल चलाया अपना, और फिर जब मधुबन में आई तो यहां पर बहुत बेगरी पार्ट शुरू हुआ आते ही। वहां तो बाबा ने 14 साल अपनी प्रॉपर्टी से सबकी पालना की, लेकिन यहां जब पेपर बेगरी का पार्ट आया तो दीदी ने ही बेड़ा उठाया कि मैं इस पेपर को पार करूंगी। दीदी के परिवार वाले सब समझते थे कि मां साथ में इनके थी, उनके बच्चों का भी मोह था। लेकिन पांच ऐसी माताएं थी जिनके बहुत पैसे वाले परिवार थे, यज्ञ में आ गई थी, उन सब ने यहां से जाकर के बॉम्बे में फ्लैट लिए और परिवार वालों को सहयोगी बनाया लौकिक को। अब उन लोगों ने सहयोग देना शुरू कर दिया, उसमें दीदी नंबर वन थी। और बेगरी पार्ट को दीदी ने बहुत स्मूथ, किसी को फील नहीं होने दिया कि बेगरी पार्ट है, जैसे भी सहयोग हुआ यज्ञ को भरपूर किया। मैं आपको बताऊं, मैं जब पहले यहां समर्पित हुआ उस समय बेगरी पार्ट था, और सील दादी का कनेक्शन बहुत, दीदी की जो छोटी बहन थी सील दादी, सिंधियों से बहुत ज्यादा था, हांगकांग जापान सब जगह उनके संबंधी थे, बहुत बड़ा परिवार था। और सील दादी बिल्कुल लौकिक से जुड़ी हुई रही, जो सहयोग चाहिए जो पैसा चाहिए वहां से उनसे लिवाते थे, मंगवा लेते थे। पहली बार मैं आया तो मुझे कमरे में बुलाया सील दादी ने, और मेरे को एक घड़ी पहनने के लिए दी। मैं ऐसे बिना घड़ी के था, ये घड़ी नहीं थी, घड़ी पहनने को दी और कहा तुम ये घड़ी पहनना। हमने कहा दीदी मैं क्या करूंगा, कहती नहीं तुम पहनना लेकिन ऐसे कुर्ते के नीचे पहनना, ऐसे कुर्ते के नीचे पहनना। मैं कहा क्यों दीदी, कहती अगर देखेंगे ना सब तो सब मांगना शुरू कर देंगे, सबके लिए थोड़ी है, तुमको मैं दे रही हूं, तुम पहनना पहले। माना यज्ञ के बच्चों की कैसे पालना करनी है, कैसे क्या इनको खिलाना है, क्या पहनाना है, क्या देना है, सबका ध्यान उन लोगों को, दीदी दादी को, उनको रहता था। तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद दीदी और दादी की जोड़ी बनी, और जोड़ी ऐसी बनी कि बाबा के लौकिक में उनकी बहू, जिसने साक्षात्कार सब देखे बहुत बड़े परिवार की और बाबा की बहुत अनन्य, और उनकी बेटी निर्मल शांता दादी और ब्रजेंद्रा दादी, जिनको वास्तव में गद्दी मिलनी चाहिए जैसे लौकिक में मिलती है, लेकिन बाबा ने कमेटी में ही उनको नहीं रखा, साकार बाबा ने किसी लौकिक को नहीं रखा। जो कन्याओं माताओं की ओम मंडली बनाई थी उसमें भी दीदी उनका नाम नहीं था लौकिक परिवार वालों का। और जब बाबा अव्यक्त हुए तो इन दोनों को आगे कर दिया बाबा ने। आप समझ सकते हो उनको कितना झुक करके चलना पड़े, कितना सबको साथ लेके चलना पड़े। संस्कार अलग हैं, योग्यताएं अलग हैं, पावर्स अलग हैं हर एक की, लेकिन दीदी दादी ने जिस तरह से पूरे परिवार को बांधा बहुत बड़ी बात थी। वो लोग कहते थे ये शरीर दो हैं आत्मा एक है, शरीर दो हैं लेकिन आत्मा एक है दीदी और दादी की। मतलब एक का जो संकल्प जो विचार है दूसरे ने कट नहीं किया, हां जी हां जी हां जी, नहीं तो कहते चार बहनें घर में रहें तो झगड़ा कर देंगे, चूल्हा अलग करवा लेंगे, और यहां पर सबके चूल्हे एक करवा देना बहुत बड़ी बात थी। और सबको मिला करके, सहन करके, समा करके, विशेषताएं देख करके, अपने से आगे रख करके, मैं बड़ी नहीं ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, इतना प्यार से दीदी दादी ने यज्ञ को आगे बढ़ाया। विदेश सेवाएं शुरू कराई, जानकी दादी पूना में बैठी हुई थी, उसको बोला तुम विदेश में जाओ, कहती मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं इंग्लिश नहीं जानती हूं। बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने कहा नहीं बच्ची तुमको ही जाना है। हाँ जी, 74 में जानकी दादी को लंदन भेजा पूना से। क्यों भेजा, क्योंकि दादी की स्टूडेंट जो रजनी बहन, जयंती बहन की लौकिक माँ थी, वो लंदन में रहती थी, और उसने कहा आप बहनों को भेजो तो मैं यहां सेंटर खोलूं। सेंटर खुलवा दिया। अब जयंती बहन दादी के साथ थी, यहां पूना में पढ़ रही थी, दादी को तैयार किया तो जयंती बहन तैयार हो गई उनके साथ, और फिर लंदन की सेवाएं शुरू की जाकर के। इतना त्याग, इतना वैराग्य, एक चीज नहीं विदेशी की चाहिए, लेकिन उस त्याग और वैराग्य की धारणा से आज उन्होंने पूरे विश्व के अंदर 140 देशों में झंडा लहरा दिया। लेकिन एक ने कहा दूसरे ने माना। दादी दीदी कह रही हैं हाँ जी, ऐसे नहीं ये कौन होती कहने वाली। तो मैंने देखा संस्कार मिलन की रास किया, कितनी भी बातें आई, कभी कोई ने कुछ किया नहीं, हर आत्मा विशेष आत्मा है, महान आत्मा है, हमसे आगे है, इस सम्मान और भावना से यज्ञ को एक आगे किया। तो दीदी, दादी, गुलजार दादी, जानकी दादी, मनोहर इंदिरा दादी, शांतामणि दादी, इन दादियों की बहुत समीप से मुझे पालना मिली। शुरू से लेकर के मैं सब दादियों के पास रहा, लिखने पढ़ने का काम होने के कारण, मुरली की सेवा होने के कारण, रोज बैठना, बुलाना, मिलना। हमारी दादियां कहती थी, ए राजू मुरली वाला इधर आओ, मुझे खजाना दे के जाओ। सबका खजाने से बहुत प्यार, मुरली से बहुत प्यार, और मेरे को टाइप करके कितनी भी प्यार हो मैं सब दादियों को देता था। रोज दे आता था, दादी ये है, आज बाबा ने कहा, आज क्लास में ये कहा, आज ये कहा। तो इन दादियों के बहुत समीप रहने का भाग्य मिला और दादियों ने बहुत स्नेह से पालना दी, बढ़ाया, अपने से आगे बढ़ाया, तब इस यज्ञ को इतना हम आगे देख रहे हैं। ठीक है, समय हो रहा है, और कुछ पूछना है?
हो भाई जी, वैसे तो हो गया, लेकिन मम्मा हमेशा ही गुप्त रही हैं, बस एक ये अंतिम प्रश्न ही, और आज भी बाबा ने मम्मा को याद किया है, गुप्त रहकर जिसने सबको बहुत आगे किया है, आदि पिता का सदा ही सुने हैं, पर माँ के बारे में वो मूल शिक्षाएं जो मम्मा ने मुरली के लिए दी हैं, वो हमें बताएं।
ऐसा है, मम्मा को ऐसे भी कहते हैं गुप्त नदी, सरस्वती को हमेशा गुप्त दिखाते हैं। जब त्रिवेणी पर जाते हो ना, इलाहाबाद प्रयाग में गए हो, कौन कौन गया प्रयाग में कुंभ मेले में, है ना? तो वहां पर त्रिवेणी कहते हैं, तीन नदियां मिलती हैं, लेकिन पानी तो दो ही का दिखाई देता है, एक गंगा एक जमुना, सरस्वती गुप्त। तो मम्मा हमेशा गुप्त रही, और बाबा कई बार उनका उदाहरण देते हैं, बच्ची कुछ लेकर के नहीं, एक पैसा भी लेके यज्ञ में नहीं आई और धन देवी बन गई, धन देवी बन गई। सारे सेठ साहूकार अरबपति करोड़पति धन कहां से मांगते हैं? श्री लक्ष्मी से मांगते हैं। संगम पर वो सरस्वती विद्या की देवी, और भविष्य में जाकर के वो धन की देवी बन गई, विद्या की देवी से धन देवी बनी है। इतना बुद्धि में बाबा की मुरलियों को ग्रहण किया, धारण किया, जो बाबा के पहले मम्मा की मुरली चलती थी। बाबा आते थे, उसके पहले मम्मा मुरली सुनाती थी, और मम्मा का एक एक स्पष्टीकरण आप देखा, दो मुरलियां मम्मा की, निराकारी वतन की, कैसे वो विश्रामपुरी है, रिटायर होम है परमधाम, कितना गहरी बातें मम्मा की मुरलियों में आती हैं। बाबा की मुरली को उन्होंने चातक पंछी की तरह, कहते हैं चातक पंछी मोती पानी बरसात को लेता है और उसको मोती बना देता है, तो मम्मा इतनी ध्यान से एकाग्रता से बाबा को देखती रहती थी, बाबा को बस एक एक बोल सुनती, अंदर समाती और उसके पास मनन चिंतन करके उस पर मुरली चलाती। तो मम्मा गंभीरता की देवी थी, शक्ति थी, दुर्गा थी, काली थी। कोई भी पेपर आया बाबा को सामने नहीं जाने दिया, मैं बैठी हूं, मैं जाऊंगी। बाबा उन्हीं को आगे करता था हमेशा। कोर्ट की बातें आई, कई प्रकार के केस हो गए, कई प्रकार के विघ्न आए, मम्मा शेरनी शक्ति दुर्गा थी, डरती नहीं थी कहीं, निर्भय, और ऐसा सामना करती थी। पहले पहले जब कोर्ट में गई तो जज के सामने, जज कहता है गीता पर हाथ रखो और कहो जो कहूंगी भगवान को हाजिर नाजिर जान करके सच कहूंगी, तो जज को कहती है, जज साहब झूठा कसम मैं नहीं उठा सकती। कहता है ये कोर्ट का नियम है। बोला ये कोर्ट का नियम ही झूठा है, आप मुझे बताओ भगवान कहां हाजिर नाजिर है, मेरे नजरों के सामने तो आप हो, मैं आपकी कसम लेकर के कह सकती हूं मैं जो कहूंगी वो सच कहूंगी। जज गरम हो गया कि क्या है, कोर्ट के नियम को विरोध कर रहे हो। बोला कोर्ट का नियम गलत है, उस नियम पर मैं नहीं चल सकती, भगवान हाजिर नाजिर है कहां मुझे बता दो, मेरे नजरों के सामने है तो बताओ, मेरे नजरों के सामने आप हो। जज को हारना पड़ा और मम्मा ने इतनी कोर्ट में दलील दी जो उसी समय जितने बाबा के ऊपर केस थे सब खत्म हो गए। ऐसी मम्मा थी, धाकड़ बोलने में। मम्मा की जीवन की तीन चार विशेषताएं सुनाता हूं। हमेशा कहती थी हर घड़ी अंतिम घड़ी है, कल का भरोसा नहीं है, जो करना है अभी करो, और मम्मा ने करके दिखाया। 2 बजे योग करना है, बाबा की मुरलियों की बार बार स्टडी करनी है। मम्मा की जीवन के अंदर था किसी समय भी सांस जा सकती, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। दूसरा कहती थी हुकुम ही हुकुम चला रहा है, कोई मम्मा को बाबा की मुरली के बारे में कह दे, बाबा ने ऐसा कहा, मम्मा आपका क्या विचार है? मम्मा मेरा विचार, वो भी भगवान के महावाक्यों में, तुम क्या कह रही है? जो कहा वो सत्य वचन है। अगर बाबा ने दिन में कह दिया है रात है, मम्मा कहेगी जी बाबा, यानी क्या बाबा भी दिन है। एक बार बाबा मुरली सुनाते सुनाते अचानक बाबा के मुख से निकल गया, बच्ची वो एक सूरदास था ना, वो सांप को रस्सी बना के ऊपर चढ़ गया, तो सामने बैठा हुआ बच्चा बाबा को कहता, बाबा वो सूरदास नहीं था, वो तुलसीदास था। बाबा, अच्छा बच्चे तूने तो समझ लिया ना, करेक्शन क्यों कर रहा है? बाबा को भी करेक्शन कर रहा है। अंधा ही तो था विकारों के कारण, तुलसीदास हो या सूरदास हो, विकारों के कारण अंधा था, उसको दिखाई नहीं दिया रस्सी है सांप है। अब बाबा के शब्द को पकड़ लिया किसी ने, सूरदास जी तुलसीदास तुलसीदास, अरे कोई भी हो अंधा तो था। तो बाबा ऐसे कहता था, तो मम्मा कहती थी बाबा की मुरली में तुम करेक्शन कर रहे हो, बाबा की मुरली मेरी राय पूछ रहे हो, नहीं बाबा जो कह रहा हो सत्य वचन है। तो मम्मा की ऐसी निजी धारणा थी और उसी भावना से जो कुछ बाबा ने कहा मम्मा ने उसी समय किया, ये नहीं कहा कल कर लेंगे हो जाएगा। मम्मा कहती थी कल काल का नाम है, जो करना है अब करो। इसलिए मम्मा ने नंबर वन लिया और मम्मा गंभीरता की देवी बन करके रही। कभी वर्णन नहीं किया मैंने किया, अरे कराने वाला वो है, करण करावन हार स्वामी है, उसकी प्रभु लीला है, मैं क्या कर रही हूं, बाबा करा रहा है। कभी भी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो ऐसी निर्माणता की गंभीरता की देवी नंबर वन बन गई, सरस्वती लक्ष्मी बन गई। ओके, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। साधना का पथ यही है, धार के सम बहना सहज है, विपरीत बहना और जो सत्य है उसे स्वीकार करना, ऐसे हमारे पूर्वज हैं, हमको फक्र होता है। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी 3 मिनट बाबा की याद में बैठे।